जगदी पार देखा सपरमत विभावना पटमती ख्याम सुचरित निरीक्षो नमो गुरुक्षो गुण गुरुख्या छत्तीस गुण सम्मे पंच विभाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रे कुशले ब्रह्मे सदा वंदे गुरु भक्ति संजने नया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नति अच्युतम जन्म मरणम नपा विंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि होत्राकुला शतकर्मा विरतास्तपोधन धना साधु प्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रवरणा चंद्रार्थ तेजोधिका मोक्ष द्वारक पाठ पाठन हता नीलं तुलां साधवा गुरुः कान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित तारणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छाई संत्यारी रुपिका और सुखो को तो सर्वजन समदान सुंदर जन समुचरी जतानम पंच विभाकारण मैरियानम वैराग्य सुगणानुदेश्याम मुच्चारणम दिगंतुम पालनदानम सुखचावनम सैनिकालम जय पूजन वृंदावनम सारी नम श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणानिति आचार्य कुंडकुंड स्वामी के आचार्य समुद्राधर स्वामी के आचार्य कुमार विद्यासागर मुनि महाराज के लिए रत्न करने का आचार्य समुद्राधर स्वामी का धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है और श्रद्धापूर्वक जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वही ज्ञान हमें संसार से काम करने वाला होता है। क्योंकि श्रद्धापूर्वक यदि कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित करेगा तो वो अपने जीवन में उसे प्रकट करने की कोशिश भी करेगा। और यदि कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर भी देता है तो उसका वो ज्ञान अंधे के सामने सैकड़ों जले हुए दीपकों की तरह होता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने किए भी कोई चारित्रहीन व्यक्ति हो और उसके पास ज्ञान हो तो वो ठीक ऐसा ज्ञान है, श्रद्धा और चारित्र से रहित ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे कि किसी अंधे के सामने दीप जला के रख दिया, वो क्या करेगा उसका। ज्ञान के साथ श्रद्धा इस तरफ और उस तरफ चाहिए, दोनों चीजें बहुत जरूरी है, तभी वो ज्ञान को ठीक ठीक बनाए रख पाती है। ये हमने पहले समझा था। और जब भी हम ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं तो हमने ये भी समझा था कि हमारे जीवन में उस ज्ञान के द्वारा तीन बातें तो आनी ही चाहिए। पहली बात, हमारा अज्ञान कम होना चाहिए। बड़े से बड़ा अज्ञान है कि हम शरीर को, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को अपना मान बैठते हैं और जब उनका संयोग होता है तो थोड़ा सुख महसूस कर लेते हैं उसी ज्ञान के माध्यम से, और जब उनका वियोग होता है वस्तुओं पर तब हम वस्तुओं के वियोग में अपने को दुखी जाना देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि ये बातें उन्हें के विषय, ये बातें इंद्रियां, ये जो मेरी देह है उसमें मैं अपने को बैठूंगा तो मैं उसमें रह रहा हूं तो रहने वाला तो घर से अलग ही होगा, घर अलग है रहने वाला अलग है। जैसे कि कोई रथ में बैठा हुआ हो तो बैठने वाला अलग है और अलग चीज है, चलता दिखाई पड़ता है रथ, लेकिन चला पाऊंगा जो रथी है जो उसमें बैठा हुआ है। इसी तरह ये शरीर चलता फिरता चलता फिरता मालूम पड़ता है, पर वो क्यों ऐसा मालूम पड़ता है? क्योंकि उसके भीतर कोई आत्मा बैठी है। मुझे सिर्फ करना क्या है, मुझे इस शरीर की उतनी ही सेवा ग्रहण करनी है जिससे कि मेरी आत्मा का पतन हो। मैं जितनी फिक्र अपने शरीर के पतन न हो जाए इस बात की रखता हूँ, उतनी ही खबर मुझे इस बात की भी रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आत्मा का पतन हो रहा। हम लोगों के साथ बड़ा मजा है कि छोटी छोटी चीजों के नष्ट होने पर यहाँ तक कि अपने शरीर पर कोई विपत्ति आ जाए पर उससे बचाव का उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन निरंतर जो आत्मा को विपत्ति डालने वाली कषाएं हैं आंख है उनसे व्यक्त नहीं हो पाते। आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ अगर श्रद्धा होगी और चारित्र होगा तो ऐसा ज्ञान हमारे जीवन को अज्ञान की हानि करने में सहयोगी होगा। इतना ही राग देश की हानि भी करता है। जितना जितना व्यक्ति श्रद्धा के साथ ज्ञान पाएगा उतना उत्तम उसका राग देश कम होना ही चाहिए, कसौटी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें फिर से उस प्रक्रिया को करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी बनाता है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है उसमें, या तो ओरिजिनल ऑक्सीजन नहीं है या कि हाइड्रोजन ओरिजिनल नहीं है, या कि दोनों को जिस टेम्परेचर पर मिक्सअप होना चाहिए वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, क्योंकि कॉज है और इफेक्ट न हो ऐसा तो संभव ही नहीं। तो जब मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, निरंतर रोज रोज में नई नई बातें जान रहा हूँ, इसके बाद भी मेरा राग देश घट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं मैं ठीक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ कि नहीं? हमें ऐसा परीक्षा प्रणाली होना चाहिए। जो ज्ञान मैं प्राप्त कर रहा हूँ वो ज्ञान अगर मेरे राग देश को कम नहीं करता है तो उस ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ज्ञान सच्चा तो वही है जो राग देश को कम करे, यदि ज्ञान का फल तो यही है कि हमारा राग देश कम होना चाहिए। ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति उसी ज्ञान के माध्यम से राग देश भी बढ़ा लेता है, पर इससे वो ज्ञान मिथ्या नहीं होता है। उस ज्ञान को जानने वाले की कहीं न कहीं कोई गलती है, तो हम उस ज्ञान पर प्रशिक्षण तो लगाएंगे, लेकिन मैंने किस तरह प्राप्त किया है, श्रद्धा से प्राप्त किया है, चारित्र पूर्वक प्राप्त किया कि नहीं, इसलिए ज्ञानाचार साथ में जुड़ा हुआ है। बहुमान रखना और उपदान रखना सम्यक दर्शन के जैसे आठंग है वैसे अपन ने ज्ञान के भी आठंग पड़े थे। ये सब बातें इसलिए बार बार समझना जरूरी है क्योंकि हम भूल जाते हैं। लिखा है आचार्य भगवंतों के लिए की महावीर स्वामी के और ऋषभ देव के समय के शिष्यों के साथ बड़ी मुश्किल है। ऋषभ देव भगवान के समय के शिष्य बहुत सरल होते थे और मंद बुद्धि होती थी, क्योंकि शुरुआत थी धर्म की, जानते नहीं थे धर्म का पाठा बन, इसलिए बड़े सरल भी थे और मंद बुद्धि तो थे। लेकिन वर्तमान में महावीर स्वामी तक पहुंचते पहुंचते उनके शिष्य मंद बुद्धि तो है, क्योंकि अवसरनी गांधी से ज्ञान घटता चला जाएगा, लेकिन मंद बुद्धि होने के साथ साथ जड़ बुद्धि होने के साथ साथ वक्र बुद्धि भी है। उनकी बुद्धि बड़ी जटिल है, मंद तो है ही, जटिलताएं इतनी है कि उस ज्ञान का ठीक ठीक उपयोग न करके उनके द्वारा जो है अपना कई बार ज्ञान के द्वारा भी अहित कर लेते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता। मैं शास्त्र को जब तक ठीक ठीक साध्य न कर लूंगा पूरा, तब तक मैं अपने खाने पीने की इंद्रियों के विषयों का इतनी इतनी चीजों का त्याग करता हूँ। ऐसे त्याग पूर्वक जो ग्रंथकार वचन करता है, ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, उसी के लिए राग देश की कमी होती है। कंप की शुरुआत में ही राग देश की कमी होगी, जिन चीजों से जितना राग था वही चीजें छोड़ी जब तक की ग्रंथ पूरा नहीं होगी। और बहुमान और विनय में थोड़ा सा फर्क है। विनय में तो हम इसको माथे पर चढ़ा करके लाए हैं, जितनी शुद्धि हो सकती थी उतनी शरीर की शुद्धि रखकर के हमने किताब छोड़ी है और आचार्य भगवंत को पहले प्रणाम किया है। ठीक है, विनय तो करनी है, लेकिन बहुमान क्या चीज है? कहते जब साधनाएं चली तो एकाग्रता रखना, इसका नाम बहुमान है। अगर आपने अपनी एकाग्रता खंडित कर दी, यहाँ ध्यान चला गया, तुम और देखने लगे, तुम कुछ और सोचने लगे, सकता हूँ तो फिर उसके जीवन में राग द्वेष कम हो गई, भीषण तो कम होगा, राग द्वेष एकदम तो कम नहीं होता पर टाइम तो कम हो सकता है। जैसे बच्चों का राग द्वेष है, थोड़ी देर को उसका जोर से गुस्सा आएगा, शायद जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो तो 5 मिनट में गले में हाथ डाले घूमते रहते हैं। अपने साथ मुश्किल ये है कि तुम राग बांध देते और कई कई दिन तक उस नाट को बांधे रहते हैं। मैं लिया ज्ञान तो वही है जो बने हुई गाथों को खोल देवे, जो उनकी भी बात को सुलझा दे। और तीसरी बात कहते हैं कि प्रीति उपजाए थे परस्पर साधर्मी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मन में प्रीति उत्पन्न होना चाहिए, प्रेम भाव उत्पन्न होना चाहिए, ज्ञान का ये फल है। अपन विचार करें कि इतने दिन से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं, हमारे राग द्वेष थोड़े घटे हैं कि नहीं घटे हैं, हमारा अज्ञान थोड़ा कम हुआ है कि नहीं हुआ है, और हमें परस्पर साधर्मी के प्रति आत्मीयता आई है कि नहीं, ये हमें विचार करना है। ग्रंथ को पल देना बहुत आसान है, अपन लोगों ने एक आदत डाली है। अपने थोड़ा सा इसके बारे में कह दूं, जिन जिन लोगों को ये मुझे भी शिकायत है पर मैं संयम रखे हूँ, हम भी संयम रखे हो प्लीज, मुझे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम तो होती है। जिन लोगों को भी इस तरह की खांसी वासी आ रही है, जब उठ करके तुरंत है अगर देखा जाए उठ करके तुरंत पीछे की तरफ चले जाए, आगे बैठने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें, कंसंट्रेशन खत्म होता, ग्रंथ की अभिनय भी होती, जिसको भी आ रही है बट नेचुरल है छिलकाना खांसी आना, पर उठ करके तुरंत जैसी खांसी आए तो मुंह पकड़ के तुरंत पीछे चले जाना चाहिए। मैं जो चाहूंगा कि तरह से तेल अपने पर रखना चाहिए। मैं आपसे कह ज्ञान प्राप्ति में ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है, इनको हम भूल रहे हैं, इस वजह से हम ज्ञान प्राप्त करते भी हैं, इसके बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। मेरे ख्याल से जितना सच के बारे में हम सब लोग जानते हैं उतना हमारा जीवन झूठा भी है। मुझे आश्चर्य लगता है कितनी बातें तो अज्ञानी व्यक्ति जो है वो ज्यादा अच्छे से कई चीजों को फॉलो कर लेता है, और हम तो इतना रोज रोज इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसके बाद भी जहाँ के कहाँ खड़े रह जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने ज्ञान को ठीक से प्राप्त नहीं किया, कहीं ना कहीं हमारी उसमें कमी रहती है। तो कोशिश करिएगा कि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए परिवर्तित करने वाला हो। विद्या या स्वमुक्ति, विद्या वो है जो हम मुक्त कर दें अपने ही विकारों से, अपने ही दशाओं से, अपने ही पापों से, इन सब से जो मुक्त करे वो विद्या सच्ची विद्या है। ऐसी अपन विद्या कर रहे हैं। अज्ञान अपने पढ़ा था मोह मुक्ति लाभ हरणी दर्शन लाभा अवाप्त संज्ञाना, मोह का अंधकार हटते ही साथ मुझे प्रकाश हो गया है, मुझे जो चीज जैसी है वैसी की वैसी दिखाई पड़ने लगी है, मैं जानने लगा था वस्तु स्वरूप को मैं जान गया हूँ क्योंकि मेरे मुंह का अंधकार हट गया है। मुंह को राह बने जैसे दर्शन मुंह मरता है, जैसे समय दर्शन होता है वैसे सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ऐसा सम्यक ज्ञान होने के बाद अगला वाला चरण है कि मोह से राह बने दर्शन आना और आपके समझाना रावत देश लगते। अब मेरा फर्ज है, इतना काम तो हो चुका, अब आगे मेरा कर्तव्य है कि राग द्वेष की हानि के लिए मैं क्या करूं। चरमन प्रतिपत्ति साधु मेरी सज्जनता इसमें है, मैं साधु पुरुष तब कहलाऊंगा जब मैं अपनी स्वेच्छा से आचरण ग्रहण करूं, व्रत नियम संयम ग्रहण करूं। क्योंकि व्रत किसे कहते हैं तो बहुत आसान सी परिभाषा बनाई थी अपन ने, हिंसा विपस्ते ब्रह्म परिग्रहे जो व्यक्ति प्रथम, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 5 पापों से विरक्त होने का नाम ही व्रत है। कोई व्यक्ति पार्शली होता है, कोई कंप्लीट होता है, तो जिस जो पूरी तरह 5 पाप का त्याग कर देता उसे हम महाव्रति कहते हैं, जो आंशिक रूप से करता उसे देशव्रति कहते हैं। तो हमें भावना क्या बननी चाहिए, महाव्रत की भावना बननी चाहिए, क्योंकि राग द्वेष की निपत्ति पूरी करना है तो महाव्रत कहना पड़ेंगे, और राग द्वेष की थोड़ी थोड़ी निपत्ति करके हम आगे बढ़ेंगे, हमारी नहीं है क्षमता महाव्रत धारण करने की तो हम अनुव्रत धारण। तो इसमें वर्णन जो है स्वागत की दृष्टि से अनुव्रत का चल रहा है, और ध्यान रखें हम कि अनुव्रत ही हमें अंगीकार नहीं करना है, हमारी भावना तो हमें महाव्रत की रखनी है, फिर ठीक है अनुव्रत का तो पालन हम करेंगे ही करेंगे। तो 5 पापों के स्वरूप क्या है उनका सकते हैं। ये बात अपन समझ रहे थे। और मैं एक बार छोटी सी बात शायद बहुत पहले कह चुका था कि जब प्राणी मात्र के प्रति हमारी आत्मीयता होती है तो हम किसी को मारने का भाव भी नहीं कर पाते। किसी व्यक्ति से अपना कम हो उसको उसको मारपीट करना पसंद करेंगे क्या? अगर मारपीट कर रहे हैं इसका मतलब आपकी उससे मैत्री नहीं है, शत्रु तो है, देश है उसके प्रति। तो अगर हम इस चीज को डेवलप कर लें कि अपने जैसा ही सबको मानना शुरू कर दें, जिन चीजों से मुझे दुख होता है उन्हीं चीजों से दूसरे को भी हो सकता है, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है वो चीज दूसरे को भी अच्छी नहीं लगती, वो भी नहीं लग सकती है, ऐसा विचार करें अगर तो हमारे जीवन में अहिंसा अपने आप आ जाएगी, फिर हम उससे झूठ क्यों बोलेंगे? कोई व्यक्ति जिससे आत्मीयता है उससे झूठ बोलता है? झूठ तो देश में से बोला जाता है, दूसरे को ठगने की दृष्टि से बोला जाता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने की दृष्टि से झूठ बोला जाता है, फिर हम क्यों झूठ बोलेंगे? फिर हम दूसरे की चीज चुरा करके क्यों हड़प करके अपने पास रखना चाहेंगे? क्यों चोरी करेंगे? क्यों हम अनचस्टडी करेंगे? क्यों हम अपने बाजू इंद्रियों के विषयों को विषय बनाएंगे? उस व्यक्ति को नहीं बनाएंगे, हम अभ्रम कर ही नहीं सकेंगे। फिर हम करेंगे तो अपने पास जोड़ करके संग्रह करके क्यों रखेंगे? जब सब हमारे हैं तो उनका जो कुछ है वो सब हमारे तो हुआ। ऐसा विचार यदि ऐसा जगत होता है, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा दृष्टिकोण यदि व्यक्ति का बनता है तो परिवर्तन आ सकता है। वरना तो ये सब बातें कई की बार अपन ने सुनी होगी, कौन नहीं जानता है कि पांच पाप किए कहलाते हैं और पांच पापों से किसने आज तक दुख नहीं अनुभव किया है, सबने किया है। पर दृष्टिकोण बदलना इतना ही शेष हमारा है, दृष्टिकोण बदलिए, हर चीज को देखने का जैसी है वैसा कोशिश करिएगा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। दृष्टिकोण बदल जाने का नाम है सम्यक दर्शन। में कई बार इस चीज को आपको कह चुका हूँ, जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा आप कितना भी बाहर से रंग होगा अपने ऊपर लगा लीजिएगा, कितने भी आप मीठे बोलना शुरू कर दीजिएगा, कितना भी आप बढ़िया बात सुनना शुरू कर दीजिएगा, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं। मैं तो देखता हूँ लोगों को जो परिवर्तित होते हैं उनकी सबसे पहली दृष्टि ही बदलती है। वे सबसे पहले आके कहते हैं कि चीजें सब वही की हुई है, चोटी वही की हुई है, मैं वही का वही हूँ, लेकिन अब वो चीज नहीं रही, अब वो सारी चीजें कुछ और ही लगने लगी। ये क्या चीज है? ये दृष्टिकोण बदल गया। और जब तक आप स्वयं महसूस करेंगे इस चीज को, कुछ दिन बाद और शायद कुछ दिन बाद महसूस करेंगे कि जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता है तब तक सब चीजें कैसी लगती है। कोई अच्छा भी होगा तब भी बुरा मालूम पड़ेगा, अगर आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है आप नहीं समझ पाएंगे उस चीज को। और अगर हमारा दृष्टिकोण अच्छा है तो हर चीज जो है वो व्यवस्थित और अपने आप अनुशासित हो जाए। और दृष्टिकोण ठीक नहीं है, हर चीज अकेली, हर चीज एकदम अशांत करने वाली होगी। तो कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि इन सब चीजों पर हमारा दृष्टिकोण बदले तो पांचों पापों से हम आसानी से बदल सकते हैं। और आज तो अपने को आखिरी वाला पाप जो हो सकता है अपन से होता है और जिसको करना व्यक्ति को पाप नहीं मालूम पड़ता है उसके बारे में पढ़ना है। परिग्रह को पाप कम लोग हैं जो कि पाप मानते हैं। परिग्रह के मायने क्या होता है? परिकम करना की आत्मानम, जो सब तरफ से आत्मा को घेर लेता है, जो आत्मा को अपने बंधन में डाल देता है वो परिग्रह है। और हमारे यहाँ पर मूर्छा को परिग्रह कहा है। जो जो मूर्छा है, जिस जिस चीज में मूर्छा है, जिस व्यक्ति और वस्तु के प्रति हम मूर्छित हैं वो सब परिग्रह है, बाकी कुछ परिग्रह नहीं है। चीजें सब रखी हुई है, चीजें परिग्रह नहीं होती। चीजों के प्रति जो हमारी ममता है, चीजों के प्रति जो हमारा ममत्व भाव है वही परिग्रह हो जाता है। ये प्रेम जब तक दुकानदार के पास है जब तक मेरा नहीं है तब तक ही मेरे लिए परिग्रह नहीं है, लेकिन जब मैं इसे खरीद करके अपने पास ले आता हूँ तब फिर इस पर मेरी अपनी मालिकियत में थोप देता हूँ। हालांकि पेन मेरा सेवक नहीं है पर मैं इसका मालिक बना चलता हूँ, ये मैं इसका मालिक हूँ। और इसका मालिक हूँ तो इसे संभाल के रखना है, इसकी सुरक्षा करनी है, इसका संवर्धन करना है, ये सारी चीजें एक साथ डेवलप होती है। ये हमें देखना चाहिए कि कितनी चीजें रखनी है और कितनी चीजों पर अपनी मालिकियत बनानी है, कितने पर अपना पोजिशन तो कई चीजों पर हो सकता है लेकिन ऑनरशिप किस किस में डालना है। बस जहां हम अपनी अवश्य करते हैं, जहाँ उनको हम उनके मालिक बन बैठते हैं चीजों के, वहाँ वो चीजें फिर हमें सुख और दुख देना शुरू कर देती है, वह चीजें सुख दुख नहीं देती है। ये बहुत सीधा सा गणित है। तो हम आचार्य भगवंतों की वाणी को जो थोड़ा गौर से देखें, यहाँ पर आचार्य महाराज कहेंगे परिग्रह का परिणाम नहीं, इच्छा का परिणाम। इच्छा ही हमारी परिग्रह में कन्वर्ट हो जाती है। चीजों की इच्छा हमें चीजों की प्राप्ति के लिए व्यथित कर देती है, और फिर चीजों की प्राप्ति होने के बाद उनका वियोग न हो जाए इस बात की चिंता हमको फेंक देती है, और जब वियोग हो जाता है तब फिर एक कष्ट उसके वियोग हो जाने का आता है। परिग्रह की तासीर यह है भैया कि जो मैं हो गए तो तकलीफ हो जावे तो सुरक्षा की तकलीफ, और अगर चले जावे तो जाने की तकलीफ है। जिसके नहीं होने होने और चले जाने सब में हम सिवाय पीड़ा की ओर कुछ नहीं पाते हैं, उस परिग्रह का लिमिटेशन तो हमें कर ही लेना चाहिए। अगर हम पूरी तरह से अपनी आसक्ति नहीं हटा पाते हैं तो हमें चीजों में इतना रखना चाहिए कि हमारी आसक्ति अपने आप कम हो जाए, क्योंकि जितनी चीजें रखेंगे उतनी हम आसक्त होने के लिए मजबूत होंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि चीजों के साथ आसक्ति रखना जरूरी हो, चीजें रखी रह सकती है, हम उनमें से अपनी आसक्ति हटा सकते हैं, ये बात तो है, लेकिन हम इतने उपाधान हमारे ऊपर कमजोर है कि निमित्त का बड़ी जल्दी असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सावधानी रखने की आवश्यकता, अपनी इच्छाओं को जो कि अनंत है उनको सीमित कर लेना। इच्छाएं सीमित होगी तो चीजें अपने आप सीमित होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इच्छाओं को सीमित करने से शुरुआत करना, चीजों को सीमित करने से शुरुआत करना हो तो भी ध्यान रखना कि इच्छाएं सीमित है कि नहीं, वरना घर में तो नहीं है एक ताना और आकांक्षा हो सकती है तीन लोग के पूरे पदार्थों को मैं अपना बना लू, ऐसी आकांक्षा हो सकती है। तो दान बिना निर्धन भी दुखी है, एक देना नहीं है, परिग्रह पास में जरा भी नहीं है, लेकिन अब शक्ति बहुत है। कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि अगर किसी को आज दो चीजें खाने की हो, चार बच्चे की तो थोड़ा थोड़ा चारों पर ध्यान रहता था, अब दो ही चीजें खाने की हो तो कोई को इतनी आशक्ति से खाते हैं जितने को चार को नहीं खाते। अगर कोई जोड़ी हो तो इतना सवाल के रखते हैं कि तीसरी तो नहीं है और कोई पंद्रह करे वो उठा नहीं है, तो ये क्राइटेरिया हमें समझ लेना पड़ेगा। चीजें होने नहीं होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारी उनके प्रति सोच क्या है, हमारा उनके प्रति दृष्टिकोण क्या है, इस पर डिपेंड करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जो जो ममता भाव है, जो जो महत्व भाव है, वही परिग्रह है। किसी भी चीज में आपका हो सकता है ममत्व, और जिस चीज में आपका ममत्व है वहीं पर समझ लीजिए वो चीज आपके लिए परिग्रह हो गई। भले थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए उतनी देर के लिए वो चीज आपके लिए परिग्रह हो गई। और किसी को वस्तुओं के प्रति जो ममत्व है, बौद्ध दर्शन में इसको प्रश्ना कहते हैं। हमारे यहां पर भी जो उंगली के विषय है उनमें आसक्ति को कृष्णा कहते हैं। कृष्णा ऐसी चीज है जो कि एक निरंतर जो है बढ़ती चली जाए, आसक्ति निरंतर बढ़ती चली जाए और चीजें मुझे प्राप्त होती जाए, इसका नाम कृष्णा। और जो जो चीजें मेरे पास हैं वो कभी मेरे से दूर ना हो, इसको बोलते कृष्णा। इसलिए इस व्रत को निवारण करने के लिए अपना मन बनाना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है, अगर मैं बना लिया है कठिन, पर अपना दृष्टिकोण बदलिएगा तो सब आसान लगने लगेगा। संतोष धारण कर लीजिएगा तो इच्छाओं का परिमाण आसानी से होता है। संतोष ही व्यक्ति चाहिए, और अगर संतोष नहीं है तब तो फिर कितनी भी चीजें रख लीजिएगा वे चीजें कोई सुख दे पाती है। जिस व्यक्ति की आकांक्षा 100 चीजों की हो उसके पास 90 चीजों की हो तो वे 90 चीजें उसे सुख नहीं देती, वो जो 10 कम रह गई है उनकी पीड़ा उसे निरंतर बनी देती। कितनी साक्षी बात हमें समझ में नहीं आती है। आपने कभी अनुभव किया कि जब आपके पास में स्कूटर नहीं थी तब कितने आराम से जो है और आप अपना काम चला लेते थे बिना स्कूटर के भी चला, और जिस दिन स्कूटर आकर के रखी तो दो चार दिन तो जो है वो यही सोचते रहे कि गैरेज कहाँ मिलेगा और कहाँ इसको रखेंगे और कहाँ रखी जाएगी, तो शायद रात में 3 बजे उठ के देखना पड़ेगा कोई लेकर नहीं जब तक सुरक्षा व्यवस्था न हो। तो उसने आकर के हमें कुछ दिया है कि हमारा कुछ छीन लिया, कभी सोचा? हम सोचते हैं चीजें आकर के नियम तो हमारे ऊपर बोझ बनती रहती है और हम सुखी होते रहते हैं कि आखिर तुम्हें मेरे पास इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें होने का सुख, लेकिन उतनी चीजों के प्रति जो हमारी लेसन है उस बात की प्रेरणा नहीं होती। इतना अगर हमें ध्यान दिया जाए तो बहुत आसान है इस पद को लेना। एक रहता परिवार में एक व्यक्ति एक साधु के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज कोई मंत्र बन चुके हम सब अपने वश में कर सकते हैं, सबको वश में करने का मंत्र है तो कहा कि दे सकते हैं मंत्र आपको सबको वश में करने का। ऐसा तो ये बता कि सब लोग तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बात मानते हैं, कोई नहीं महाराज कोई नहीं मानता, कोई मैं वश में नहीं है। अच्छा तो लोग पर क्या कर सकते, तुम मेरा भेजे तो तुम्हारी बात मानते हो, नहीं महाराज कोई नहीं हमारी बात नहीं मानते, नौकर क्या करते भी हमारा वश में। अरे भैया तुम बताओ तुम्हारे लड़के को करो तुम्हारा वश, मैं वो तो और उल्टा लिख लो तो बिल्कुल वश नहीं आओ, मैं सब ले जा बताओ और सबके जो छोड़ो तुम्हारा अपने ब्रह्मांड को वश ले
कि बाहर की तुमसे कम बाहर की परिक्रह से भी बच जाओ, वरना ये हमें
शिक्षा यही उपदेश दिया करते थे कि भैया और पाप छोड़ो चाहे नहीं छोड़ो, अपने परिग्रह का परिमाण तो कर ही लो, सब पापों से बच जाए। जिसका परिग्रह का परिमाण नहीं है वो चाहे जितना धर्म कर ले गए, जितने पूजा पाठ कर ले गए, जितना दान पुण्य कर ले गए, परिग्रह का परिमाण नहीं है तो क्या होगा? यही होगा कि कीचड़ लगाओ और जाकर के दो, कीचड़ लगाओ और जाकर के दो। अरे भैया लगाओ ही काय को, इतने करो ही काय को, दान देने की आगे बात चाहिए से कराया कि दान कर सके, पानी से देने के काम हो सके, जो कहो कौन से शुरू हो, यही से तो शुरू होगा। धन संचित करूंगी क्यों, ताकि फिर मुझे उसका दान दे करके शुद्ध करना पड़े। मैं धन का निषेध नहीं कर रहा, उसमें लिखा है धन शासन में कि अगर कोई ये सोच करके कि मैं पाप से संपत्ति कमाऊंगा, पाप करके कमाऊंगा तो पुण्य के पास में लगा दूंगा, तो कहते हैं ये गलत है। कोई व्यक्ति माता दान के तहत मुझे माता डालूंगा और फिर बाद में गरीबों को बांट दूंगा, इसका नाम धर्म नहीं है। कोई कहे कि मैं तो स्वाटर हाउस खोल करके उससे जो होगी उससे ऋषि मुनियों की सेवा करूंगा, धर्म की सेवा करूंगा, तो ये धर्म नहीं हो भैया, ये मैं धर्म रखना पड़ेगा, इस चीज की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रसंग करते चले जाते हैं चीजों का और देख ही नहीं पाते हैं चीज। अगर कोई व्यक्ति समुदाय की तरह कमाशाय की तरह और जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन दे ही दे तो भी एक बात ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। उन्हीं चीजों पर जिंदगी भर बैठे रहते हैं और पढ़ते समय की वे चीजें हमारे ऊपर बैठी रहती है और हम न जानते हैं। कभी सोचिए इस चीज। अच्छा नहीं लगता है दोनों चीजें है। जो व्यक्ति धन धान इत्यादि की सेवा कर लेता है और उससे अधिक की इच्छा नहीं रखता है उस व्यक्ति के इच्छा परिवार एक परिग्रह परिवार नाम का अनुभव बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। दस प्रकार का परिग्रह है सेवा बना दीजिएगा और ये हो जाकर के बस बना दीजिएगा किसको रखना है कितना रखना है दोनों रखना इससे ज्यादा तो जिंदगी में आनी नहीं है। 50 तो भी रखा है 100 को भी किसी ने रखना इससे ज्यादा रखना नहीं अपने को भी दिया है तो उसको देना है सब भी दे देंगे सुनो उससे भी कम हो जाए और अच्छा रहे क्या दिक्कत है। रुपए रुपए तो अभी तक हमने 1 लाख के 20-25 लाख देखे पहले 50 लाख रख लेते हैं इससे ज्यादा और क्या आएंगे जिंदगी में 50 लाख से ज्यादा क्या काम करेंगे जिस दिन 50 आएंगे तो उसमें से दान कर देते 50 से ज्यादा होंगे तो दान करते इसमें क्या इसमें कोई परेशानी है क्या मेरे ख्याल से तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे कहेंगे वो भी की मैं 50 घड़ी का पूरा करते हैं चलूंगा इन चारों मत तक खरीदूंगा जब इसमें से निकाल दूंगा और क्या करना है 50 से ज्यादा नहीं रखूंगा घर में जो है बर्तन रखेंगे एक हस्ती के लायक जितने बर्तन है उतने बर्तन रख सकते हैं अब कोई नया लाने की इच्छा होगी तो पूरा खाना निकाल दूंगा नया नहीं दूंगा इसमें क्या दिक्कत है पर इससे ज्यादा नहीं रखूंगा संख्या नहीं बढ़ा यही तो परिग्रह का परिमाण है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दो मकान हमारे जिम्मे है दो मकान के लिए इसकी है इसका लेना नहीं है ये दो रखना बस दो मकान चल जाए हो गया मकान की सीमा होगी क्षेत्र वास्तु किरण स्वर्ण धन धान दासी दास पुत्र इन 10 प्रकार की चीजों का जो रोज बढ़ने के काम में आती है उनका लिमिटेशन कर लेना उससे ज्यादा की इच्छा नहीं रखना इसी का नाम परिग्रह का परिमाण का मतलब अनलिमिटेड एरिया हमको केवल जमीन कितनी रखनी है वास्तु का मतलब घर कितने घर रखना है कितनी मान की रखनी है और धन का मतलब होता है गोधन गाय इत्यादि कितने रखना है और धन मतलब बिल आदि जो कितने बोला साल भर के लिए अनाज रखता है 10 बोरे रखता है सारा 10 बोरे से ज्यादा मैं कलेक्शन नहीं करूंगा कितना हो जाएगा एक खाली हो जाएगा तो कोई नहीं होगा इसमें तो आगे थोड़ी जा रहा हूँ एक चीज हो गया राशि पास हो गया केवल स्वर्ण की सीमा कर ली सोने चांदी की सीमा कर ली देश की सीमा कर ली राशि पास कितने अपने अपने काम के लिए कितने लोगों को एक साथ लगाऊंगा एलिमिनेशन कर लिया और केवल स्वर्ण ये उप उप का मतलब होता है वर्ग धन आपके वस्त्र इत्यादि धन का मतलब होता है वर्धन इत्यादि तब जाने वाला है धन की राशि लाइन भी आपकी है सारे बढ़ती फोन बना सकता है लाइन लाइन लेकिन पुराना निकाल दीजिएगा दान लोग कम करेंगे अगर एक लोग जाकर छोटी हो गए तो उसको दूसरी तरह से उस लोग को कम कर दीजिए 10 चीजें लाना है एग्जैक्ट पूरा 12 का लाना है प्लेट का हाँ पुराने नदी अलग कर कोई भी चीज अलग करो 12 चीजें अलग कर दो 12 लाना है भाई इसकी कितना आसान है आनंद क्षेत्र की वही भगवान महावीर स्वामी के समय में बुद्ध के भक्त थे लेकिन महावीर स्वामी के पास भी आए ऐसी कथा आती से अनुरस है और अनुज सृष्टि को बहुत बड़ा व्यापार था नगर क्षेत्र से होते और इतना बड़ा व्यापार था कि हजारों जहाज सोने चांदी जी के द्वारा से लगे हुए हमें तो मंदिर डाले खड़े रहते थे मंदिर का भगवान के सामने आकर उन्होंने कहा कि मंदिर 5 की तारीख में जितने मेरे मंदिर ग्राह पर इधर खड़े हुए जहाज हैं बिगड़े बाकी जो जहाज निकल गए हैं उन सबका क्या करें भगवान कुछ नहीं बोले मुझे भगवान कुछ नहीं बोले आनंद शास्त्र ने सोचा कि शायद मुझे और थोड़ी सीमा बढ़ाने के लिए अच्छा भगवान जितने जहाज यहाँ लंगर डाले खड़े हैं उसमें से आधे मेरे आधे भी त्यागता फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले तीसरा दिन हो गया तीसरे दिन आनंद ने कहा कि भगवान 5 ही जहाज सीधे महाराज से भरे अपने पास रखता हूँ बाकी सब छोड़ता अब कहते हैं भगवान ने कहा कि आनंद जानो तुम ग्रहण नहीं कर सकते तो त्याग का अहंकार कैसे हजारों लोगों के बीच तुम दुनिया से मेरे से जो बात कह रहे हो उसके पीछे तुम्हारा अहंकार मुझे दिखाई देता है कि मैंने इतना छोड़ा मैंने इतना छोड़ा मैंने इतना छोड़ा तुम्हारा खाकर जो तुम छोड़ोगे उसको पहले इस चीज को ध्यान में रखो फिर उसके बाद जो छोड़ना हो वो छोड़ो तब प्रक्रिया का परिणाम होगा कि चीजें मेरी थी नहीं जो मेरी है नहीं तो मैं उनका अपना पोजिशन कैसे बना रहा हूँ मैं अपना पोजिशन कम करता हूँ घटाता हूँ खेने मेरी इसलिए हटा रहा हूँ क्यों इसलिए छोड़ रहा हूँ इसमें अहंकार हो सकता है तो फिर कहीं के भगवान ने कहा कि आनंद आज की डेट लेकिन जितना तुम्हारे पास हो उतना रख लो, इसके बाद नहीं। अब इतने में मुश्किल हो गई थी क्योंकि आनंद सृष्टि की हजारों गायें थी। दूसरे चार दिन के बाद उन हजारों गायों ने नए बच्चों को जन्म दिया। अब 1,000 की 2,000 गायें हो गई। निकालो 500 पेयर निकालो, दान करो। जितने फलों के वृक्ष लगे हुए थे सब पर गिनती करवाने आज की तारीख में जितने फल लगे आनंद सृष्टि के कल अगर जाएंगे तो वे पूरे गाँव को दान दिए जाएंगे। कहते हैं कि पूरा शहर खुशहाल हो गया था क्योंकि रोज आनंद सृष्टि के यहाँ पैसा बढ़ता था और रोज दान करना पड़ता था क्योंकि आज की तारीख में जितना है उससे एक पैसा भी आगे बढ़ेगा वो मेरा नहीं हटा दो। ये है पवित्र परिवार का आनंद। जो व्यक्ति परिग्रह का परिवार कर देता है वो सुखी हो जाता है। वो कहता है नहीं है तो मेरे पास इतना पर्याप्त हो गया तो वो आपको चला जा रहा था उसको तो चलेगा। नहीं तो कृष्ण भक्ति चली जाएगी और मैं दुखी होते चले जाऊंगा। चीजों के होते हुए मैं दुखी होते चले जाऊंगा। चीजें हो और मुझे थोड़ा सुख पहुंचाए इसके लिए इतना इंतजार कर लें कि अधिक न रखें और सीमा बना लें। इसको परिग्रह का परिवार कहते हैं और उस परिग्रह के परिवार में कोई व्यक्ति एक और छोटी सी घटना की है। किसी साधु ने एक बढ़िया बगीचा लगा रखा, इतना सुंदर बगीचा था कि हर आदमी उसे चाहता था और उसने बाहर एक प्लेट लगा रखी थी कि जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे पूरा कोई बगीचा दे सकता। तो लोग आए और बड़ा वापिस लौट गए तो उन्होंने एक शब्द की रख ली थी तो उनको बगीचा नहीं मिला। राजा हुआ, राजा ने सोचा कि मुझे तो बगीचा मिल ही जाएगा क्योंकि मेरे को कोई इच्छा नहीं, मुझे जो कुछ चाहिए था वो सब मेरे पास थे। तो उसने कहा साधु से ये बगीचा मुझे दे दो, मैं इसका बचा लूंगा। बेटी हुई है कि जिसकी आप कोई आशा ना हो उस व्यक्ति को मिलेगा। तो उन्होंने कहा साधु ने कितना भी नहीं मिलेगा, तुम्हें बगीचे की आकांक्षा है ना, इतना तो है। जिसको बगीचे की आकांक्षा नहीं होगी उसको बगीचा भी जाऊँ, मैं उसके पास खुद जाऊंगा जिसकी सारी आकांक्षा जो मेरे पास आएगा तो कोई ना कोई आकांक्षा है उसकी, इसलिए उसको नहीं देना। ये बोर्ड सीधा सीधा नहीं होगा, मैं तो दे देगा इन लोगों की संपदा उससे जिसकी भीतर कोई अहमान न होता। तीनों लोगों की संपदा उसे दी जाती है जिसके भीतर कोई अहमान नहीं है। जो तीनों लोगों की संपदा के ऊपर चार अंगों ऊपर बैठा है उसकी है वो पूरी संपदा, उसके पीछे भाग है और हम उसी के अनुयायी है। उसी संपदा में सुख मान के बैठे हैं जिसने उस संपदा को नीचे छोड़ करके उसके ऊपर चार अंग बैठ गया है। जो गीता की सर्वगीत उपदेशी है उनके अनुयायी हम उस संपदा में कितने विलुप्त हो गए हैं ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। इस संपदा को हमें छोड़ने की बात कही थी उसी को हमने धारणा करनी है। जिसको भी छोड़ के गए हमने पकड़ करना, संपदा ने नहीं पकड़ा हमने पकड़ करना। थोड़ा सा विचार करिएगा और जरूर अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करें। देखिए तो बना तो देखिएगा एक चीज छोड़ करके बदलिए और उसका आनंद अगर आपको नहीं मिले तो फिर बदल आनंद मिले तो बस आगे बढ़ते चले जाइएगा। रोज रोज देखिए एक चीज छोड़ करके देखिएगा कि इतनी दो चीजें मेरे पास हो बस अब तीसरी नहीं चाहिए। मजा आप दिन भर के मुझे तीसरी चीज चाहिए नहीं, कोई विकल्प नहीं मिल जाएगी। अगर किसी को देगा ले लेंगे, किसी को भी दे देंगे। ये तो ये हमारी जिसमें दोष लग सकते हैं उन दोषों को भी देख लीजिएगा और बात पूरी हो गई परिग्रह के बारे में। वैसे तो पूरी जिंदगी पूरी नहीं हो सकती है, जब तक इच्छाएं हैं तब तक बात पूरी नहीं होती। जिस दिन इच्छा मर जाती है उस दिन ही बात पूरी हो जाती है। अपनी आपकी संग्रह बोला था, लेकिन इसका पता नहीं सफल बात उससे भी लेकिन स्थिति बनी गई थी। दो सौ तो है मानो इंडर्जी इतनी है आशक्ति क्या मैंने बेचू जब मेरे को कहा होगी जब बेची तो कहती है आपकी संग्रह वाली चीज है, ज्यादा समय तक संग्रह रख के रखोगे तो वो हो जाएगा उसके प्रति अति विस्मय। अति विस्मय में जो है खेद ही होता है, जैसे कि अपन ने कोई चीज रखी अब उतनी रखनी थी थोड़े दिन के दौरान तो बेचने पड़ी, बाद में चार दिन की बात दाम बढ़ गई तो अब क्या कर रहे हैं। अरे ये सच्ची तो चार दिन बाद बेचती रखी रखती अब सीमा तो हमने बना ली थी, वो सौ गुना तो ले नहीं सका, ये सौ भी बेच गए वो सब चीज बेचने पड़े रखों तक रहेगी पक्ष में। ये भावा सकता मन में तो ऐसा कह दिया क्या कि इसमें नहीं करना, अगर कोई चीज ऐसी हाथ से निकल जाए तो फिर नहीं करना, वरना फिर कहेंगे कि आकांक्षा भी तक टूट गए और अपनी भार वहन जितनी क्षमता है उससे अधिक भार का वहन नहीं करना, चाहे वो पशु हो चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो अपना जीवन से अधिक चलना हो, अपने जीवन पर भी बहुत अधिक बोझ नहीं लादना, अपने से भी बहुत अधिक काम नहीं लेना कि अब चूंकि हमने बहुत सीमा रख रखी है अब उतने में गुजारा चलाना है तो सुबह से शाम तक अधिक है तो इतने में इसे चलाना है, इसमें ज्यादा तो रखना नहीं है क्योंकि तो सीमा बना लेने के बाद तो संतोष रहना चाहिए, आसक्ति और बढ़नी नहीं चाहिए, ऐसा अधिकार लग सकता है। इसलिए अभी अधिकार की तो बातें नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, अभी तो सिर्फ तरक्की की बात अगर अपने जीवन में ये रुचियां होगी तो मैं तो मानूंगा कि अगर एक व्यक्ति भी इस भोपाल से कोई संकट कर लेता है अपने परिवारों को सीमित करता हूँ तो मैं तो इसे उपलब्धि मानूंगा। इस चतुर्मास की उपलब्धियां शायद ऐसी होंगी छोटी छोटी सी, छोटी क्या बहुत बड़ी कहलाएंगी, वास्तव में उपलब्धि तो वही है कि व्यक्ति एक व्यक्ति ने भी अगर अपना जीवन बदल लिया तो सार्थक हो गया। बाकी तो आज के समय में बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ कि आप सुन सकते हैं आप समझ सकते हैं लेकिन करने की मजबूरी आपकी कितनी है कितना कर सकते हैं मैं जानता हूँ। बहुत प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उनको तो आप करिएगा, मन बनाइएगा और धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण को बदलिएगा तो जरूर से अपने आप सारी चीजें व्यवस्थित और अनुशासित होगी। मैं धारणा पाता हूँ कि हम सबको एक ऐसी अच्छी दृष्टि मिले कि हम चीजों के स्वरूप को वास्तविकता को समझ करके उनका सदुपयोग कर सकें, अपने जीवन का कल्याण कर सकें। ऐसी भावना के साथ मेरा खेल बुरा विद्या स्वागत हुआ।
इसलिए बसों को चाहिए कुल टीम का अब तो हमें